जबकि पाकिस्तान की नज़र में वो इसको एक आलमी कवानीन के मुताबिक वो इसको एक इंटरनेशनल सरहद जो है वो समझता है। तो फिर आप के पास क्या ऑप्शंस है इस सूरत हाल में रह जाते हैं? क्या आपकी जो हुकूमत है वो ये इस गेट की कंस्ट्रक्शन करने देगी?
हम गेट नहीं है यहाँ पे, अंगूर अड्डे में है एक, उस वहाँ पे भी गेट है।
जी
हमारे गुलाम खान की बॉर्डर जो खोस है वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, और हमारे ये कोई ख्वाजा खिदर कहते हैं वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे कुनड़ के आसपास कुछ इस तरह का गेटों की बात है जो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जाना आना वहाँ दोनों दरमियान है, दोनों मुल्कों के दरमियान। कभी यहाँ पे ये हमारी कलाश की लोग जो है, वहाँ के चतराल की लोग जो है, वो कुनर को पास करके, नूरिस्तान को पास करके वहाँ से गुजरता है, तो वहाँ पर भी इसी गेटों की बात था। जहाँ तक अब हमारे पास कोई ऑफिशियल लीगल ड्राफ्ट या माहिदा अब नहीं है, लेकिन सिर्फ हम देखते हैं ड्यूरेंट माहिदे में, ड्यूरेंट माहिदे में या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के दरमियान जो ये लाइन की हदूदात है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं देते, और यहाँ पे हत्ता जाना आने की ममानियत का भी जिक्र किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान और इसी लाइन पर जो लोग गुजरता है उस पर कोई रुकावट नहीं होगा। तो ड्यूरेंट लाइन की माहिदे के तहत बहुत क्लाजेस जो है वो दोनों मुल्कों के रिलेशन को मजबूत बनाने की हद तक है। तो ये बात, और हम समझते हैं कि अगर कोई इस तरह लीगल ड्राफ्ट नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कानून नहीं है, तो उसके लिए एक कानून बनाना जरूरी है, और जब तक कानून बनते हैं तो जो भी मुनाज़ई मौजूआत है, जो भी क्लश की बायस बन जाते, जो भी हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की कशीदगी बन जाते, कशीदगी के सबब बन जाते, तो उसको मेरे ख्याल में एक समझौते की जरूरत है, और ये समझौता मुजाकिरात के तहत मुजाकिरात की जरूरत है, और उसको बढ़ाना और उसको एक दरख्त में लाना इसका जरूरत है। तो इस तरह हमारा हुकूमत जो है अफगानिस्तान का, अभी बायलेटरल डायलॉग जो इस्लामाबाद में हो रहा था तो उसमें ये जिक्र किया कि एक एक इस तरह सनद पर या दरख्त पर हम काम करें कि वो हमारी आनी कशीदगी जो है ग्राउंड में उसके हल व फसल करने के लिए काम आ जाए। जो बुनियादी मसाइल है जिस तरह हम देवरन लाइन, वो
सही
हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की एक समझौते की बात से भी कुछ बाहर है, कुछ बड़ा रेफरेंडम और इंटरनेशनली उसकी हल और सोल्यूशन निकलना उसका जरूरत है।
ठीक है। हमारे साथ रहिए आसिफ नंग साहब, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप वैसे पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप अगर मज़ीद हमें बता सकें, क्योंकि हमारे पास यहीं तक खबर है कि ये जो मुलाकात हुई है अफगान और पाकिस्तान के वफूद के माबेन, इसके अलामिये में ये बात की गई है कि एक मुनासिब निज़ाम की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ है दोनों कंट्रीज़ के माबेन। मज़ीद जो है वो क्या इत्तलात हैं आपके पास, अगर हमारे साथ शेयर करें? और ये भी बताइएगा कि एक मुनासिब निज़ाम, वही सवाल जो आसिफ नंग साहब से भी मैंने किया है, पाकिस्तान की नज़र में एक मुनासिब निज़ाम जो है वो क्या होगा?
बहुत नवाज शरीफ कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी तक जो खबरें आ रही हैं मुझे यही है कि ये टॉक जो है ये कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद या नतीजा खेज साबित नहीं हुई हैं, और बस इस बात पे इतफाक़ किया गया है कि बातचीत चलती रहे, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आइंदा जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है ताशकंद में तो वो वहाँ मिलकर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं साहब की बात सुन रहा था जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बातों में कुछ तजाद नजर आया। एक, या तो वो ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट करें कि ड्यूरन लाइन वाकई ही एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है और उसकी एक हैसियत है, ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर फिर वो कहते हैं कि ड्यूरन लाइन की चंद क्लॉजेज ऐसी हैं जिसके तहत आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बॉर्डर के ऊपर। तो या तो ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट करें या उसको एक्सेप्ट ना करें, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का बुनियादी जो इशू है वो यही रहा है कि उनमें खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब वो पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन तो रिकग्नाइज करते हैं, अगर पाकिस्तान अगर एक इंडिपेंडेंट नेशन है, एक मुल्क है, उनके बॉर्डर पे है, तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर कहाँ पे हैं? वो कौन से पाकिस्तान को रिकग्नाइज करते हैं? पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर कहाँ पे है उनके नज़दीक? तो उनके नक्शों में पाकिस्तान की क्या क्या शक्ल बनती है? तो बहरहाल इनको आजकल के ज़माने में रहना चाहिए और एक रियलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। ड्यूरल लाइन एक हकीकत है जो कि यूनाइटेड नेशंस में भी एक्सेप्टेड है और इंटरनेशनली सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान भी इसको एक्सेप्ट करता है, और अफगानिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो भी इसको एक्सेप्ट करे और यहाँ से आगे चलने की बात करे, बजाय इसके कि हम 18वीं या 19वीं सदी में अटके रहें और जो आइंदा आगे चलने के जो हमारे मौाक़े हैं उनको भी हम ज़ाया करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात थी लोगों का आम तौर पे या खुले बंदों इस ड्यूरेंट लाइन के आसपास जाने की जो उनको सहूलत हासिल है और उसका क्या सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि आपने बात की। देखिए,
जी
मैं खुद पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे सर्व कर चुका हूँ। जब मैं वहाँ पे था mid-80s में या टू late 80s में, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में थी और वहाँ पे सख्त जंग चल रही थी, उस वक्त भी हमने देखा है कि वहाँ पे, मैं कुर्म एजेंसी में था उस वक्त, जहाँ पे इन्होंने भी बात भी किया खोस्त के इलाके की और नंगरहार के इलाके की, तो वहाँ पे आना जाना जो है लोगों का वो काफ़ी हद तक आसान है, क्योंकि बेशुमार पोरस बॉर्डर हम जिसको कहते हैं, बेशुमार जगह हैं जहाँ से कि आप ये जॉर्डन लाइन को आराम से या इंटरनेशनल बॉर्डर को आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अब इस क्रॉस करने की जो वजह क्या है, इसकी जो इजाज़त दी हुई है जो कि मुआहदा हुआ था शायद अंग्रेज़ों में और अफगानियों में, उसमें यह कहा गया था कि जो ट्राइब्स हैं जो कि ड्यूरेंट लाइन की वजह से डिवाइड हो गई हैं, उन ट्राइब्स को खाली ईजमेंट राइट्स अवेलेबल होंगे, और ये ईजमेंट राइट्स ये हैं कि वो आपस में मिलजुल सकते हैं।
सही
तो ये उस वक्त के हालात से के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, मगर एक यहाँ पे बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि ये ईजमेंट राइट्स जो हैं ये सिर्फ उन ट्राइब्स के लिए हैं, उन कबाइल के लिए हैं जो कि डिवाइड हो गई हैं ड्यूरेंट लाइन की वजह से। ये बाकी मानदा अफगानिस्तान या बाकी मानदा पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये बाकी मानदा अफगानियों के लिए या बाकी मानदा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, सिर्फ उन चंद कबाइल के लिए ये सहूलत हासिल है।
ठीक
अब आजकल के अगर हालात में हम देखें, जबकि टेररिज्म इतनी बढ़ गई है और इतनी दहशतगर्दी हो रही है, तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है
ओके वो
कि
आपकी नज़र
अफगानिस्तान।
में वो इसी तरह हो सकता है बकौल पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ है और आप जो कह रहे हैं कि बॉर्डर को मैनेज करके ही दहशतगर्दी पर काबू पाई जा सकती है। डॉक्टर तकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, इस पे हम उनसे भी कमेंट्स लेंगे। लेकिन आपकी बात की है आसिफ नंग साहब, और आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आपने अफ्तार का टाइम आपका हो चुका है। ये बताइएगा जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि या तो आप ये जो बॉर्डर है इसको अफगानिस्तान एक्सेप्ट करें, आप भी एक अफगानिस्तान के आला ओहदेदार हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? और फिर ये कि उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है कि फिर आपकी नज़र में मगरबी बॉर्डर जो है वो कहाँ पर वो करता है, स्टैंड करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की नज़र में?
जहाँ तक देवरन की बात है, हमारी तरफ जो देवरन में माहदे में हमारी मुकाबल तरफ तो पाकिस्तान नहीं है। अगर देवरन की बात करें, हम लीगली हम यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के तहत में जो माहदा इमजा हुआ, हमारा तरफ जो है वो बरतानवी हिंदुस्तान था, तो अब वो नहीं रहा। और अगर रहा इस माहदे का 100 साल उम्र था, तो 100 साल अब पाकिस्तान का उम्र कितना है? हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का 60-65 साल उसका सब उम्र है, लेकिन माहदे की जो तरफ है वो पाकिस्तान नहीं है। फिर हम हिंदुस्तान बरतानवी हिंद पे मुज़ाकरात करेंगे इसी बारे में। जो इस बेरन के माहदे की बातें हैं, लीगल बातें, बहुत उसमें मुगलक बातें हैं जो अभी उसके लिए इस तरह सादा नहीं है कि उसको कोई एक्सेप्शन करे, हमारी जानिब से हम कबूल करें या इस पर हम कबूल ना करें। ये दोनों नेशन के दरमियान एक फैसला है। हमारी यहाँ पे बॉर्डर में, क्रॉस बॉर्डर में जो लोग रहते हैं कबायली ट्राइबल एरिया में, जो यहाँ पे लोग हैं उनकी राय और नज़र जो है एक रेफरेंडम, ये उसके लिए ज़रूरत है। जो हम समझते हैं कि इसका अभी इस जरूफ में, इस हालात में इसका कोई इम्कान नहीं है। سر یہاں پہ اس پر کون نظارت کرے گی, اس پر کس کا نظر اور مراقبت ہوگا جو ہم اس کا تقسیم کرے؟ ہماری جو لائنز جو ہے, ہماری جو حدود ہے, ہماری جو بارڈر ہے اوریجنلی افغانستان جو ہم گریٹ افغانستان کے تھے, بڑا افغانستان, اس کا حدود جو اٹک تک ہے, جس کا حدود جو ایوبیا تک ہے, جہاں تک وہاں تک, وہاں پھر چترال میں بہت مومند ایجنسی میں, خیبر ایجنسی میں, یہاں پہ سب وزیرستان میں اس کا ایک حدود ہے. جو ہم اس حدود تک اگر جائیں تو اس کی کلیئرنس کے لیے اور اس کی نہائی کرنے کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے پھر بہت ٹائم لگے گی اور اس کی ایک بہت بڑا پریکٹس ہوگا. اس طرح ایزی بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی دکان کی سودا ہے, دے دو بھائی اور قبول کرے یا نہ کرے, اس کا اس حد تک نہیں ہے. اس کے لیے
جی اوکے, آصف ننگ صاحب جو فرا پروونس کے گورنر ہیں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے 15 منٹ کے لیے ہی ہمارا ساتھ دینا تھا, دوبارہ ہم ان کو ٹرائی نہیں کرتے, لیکن ان کا جو پوائنٹ تھا اور جو کوسچن بریگیڈیئر صاحب نے کیا تھا اس کا آنسر آ گیا, اور آنسر اس کا یہ ہے کہ افغانستان جو ہے آفیشیلی اس بارڈر کو, ڈیورنگ لائن کو وہ قبول نہیں کرتا, اور اٹک تک ان کے بقول جو گریٹ افغانستان ہے ان کا افغانستان جو ہے وہ دعوے دار ہے, اور اسی وجہ سے جو گیٹ کی کنسٹرکشن ہے اس پر یہ اسٹرانگ رد عمل جو ہے افغانستان کی جانب سے سامنے آیا ہے گزشتہ دنوں. ڈاکٹر محمد تقی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
ہلو
جی ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی
جی, آپ نے ہمارے دونوں پاکستان اور افغانستان کے انالسٹ کو سنا, ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جو جورین لائن ہے دونوں کنٹریز کے مابین ایک دیرینہ یہ مسئلہ ہے. یہ میں کوسچن کرنا چاہوں گی, اس موڑ پہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی جانب سے اس ایشو کو دوبارہ اٹھانا, اس کے پیچھے دونوں کنٹریز کا ان کی سوچ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت مسائل کچھ اور ہیں. جی 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 پلیز.
بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا اور اس کی پریکٹیکلٹی جو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے, چلیے بفرض محال یہ بات مان لی جائے, تو اس کا جواب کون دے گا کہ افغانستان کے طالبان کا لیڈر ملا اختر منصور جو ہے وہ کچھ لاکھ میں رہتا تھا, جو کوئٹے سے 45 منٹ کی ڈرائیو ہے, اور وہ 60 میل بارڈر کے اندر علاقہ ہے وہ, ٹھیک ہے جی, اور وہ کراچی کے ایئرپورٹ سے وہ پرواز کر کے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر دبئی جاتا ہے. تو اس مسئلے کا حل ڈیورن لائن سے کیسے نکلے گا؟ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ وہ کورم میں سروس کر چکے, کچھ تھوڑا بہت اس علاقے کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں. مٹا سنگر کورم کا ایک علاقہ ہے جو افغانستان میں خوست کے بارڈر کے ساتھ, آج کے دن تک وہاں پہ حکانیوں کے کیمپ ہیں, جلال الدین حکانی کا بیٹا سراج الدین حکانی وہاں پہ 2 دفعہ ڈرون اٹیک میں بچا ہے.
صحیح.
تو یہ راداری کے معاہدے سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. پھر بھارکو کی ایک کا علاقہ ہے, جی جب آپ اسلام آباد سے مری کی طرف جاتے ہیں تو کوئی 25-30 میل باہر اسلام آباد سے, تو وہاں پہ جلال الدین حکانی کے بھانجے بھتیجے بھائی وہاں پر رہتے تھے, ایک ان کا لڑکا نصیر الدین حکانی اسلام آباد میں مارا گیا, روٹیاں خرید رہا تھا وہاں پر, تو وہ تورخم سے آیا تھا, وہ غلام خان سے آیا تھا یا وہ چمن بولڈک سے آیا تھا. تو یہ باتیں جو یہ کرتے ہیں عجیب پیرایا ہے ان کے بیان کا کہ افغانستان, بھائی 40 سال سے جو ڈیورن کی وائلیشنز آپ نے فرمائی ہیں اور پاکستان کی فوج نے کی ہیں, یعنی بے انتہا وائلیشنز ہیں. اگر آپ کو اتنا فکر ہے ڈیورن کا تو آپ جو مرضی کریں, یہ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں پاکستان میں بلا کر, یہ کون سے معاہدے کے تھے, یہ کون سے دنیا کے انٹرنیشنل قانون کے نیچے ہیں؟ تزار عزیز صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں لڑ سکتے, افغانستان کی لڑائی ہم اپنی سرزمین پر نہیں لڑ سکتے. بھائی آپ افغانستان کے دشمنوں کو اپنی سرزمین میں بٹھا کر بلاتے ہیں, رکھتے ہیں, ان کی فیملیز کو رکھتے ہیں, خود یہاں پر فرما کر گئے ہیں امریکہ میں ستار عزیز صاحب, 2 مارچ کو سی ایف آر کو ان کی ڈسکشن تھی ڈاکٹر طاہر خیلی کے ساتھ, اس میں وہ کہہ کر گئے ہیں کہ طالبان رہنما پاکستان میں رہتے ہیں, ان کی فیملیز وہاں رہتی ہیں, ان کو علاج معالجے کی سہولتیں ملتی ہیں. یہ کون سے اس کا ڈیورنٹ سے تعلق بنتا کیسے؟
لیکن ڈاکٹر تقی صاحب ایک سوال یہاں پہ آپ سے,
اوریجنل سوال کی طرف میں آتا ہوں
جی, میرا دوسرا بھی سوال اس وقت ذہن میں آ گیا کہ آپ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوسچن میں کرنا چاہوں گی، اگر ہم دیکھیں تو 9/11 کے بعد سے خاص طور پر پاکستان جو ہے افغانستان کو بلیم کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں آ رہے ہیں، یہی شکایت افغانستان کو پاکستان سے ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اس بارڈر کو مینج کرنے سے یہ نقل و حرکت جو ہے یہ رک جائے گی ایک طرح سے، یہ ایٹ لیسٹ بلیم گیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایک اعتماد کی فضا،
ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنل بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ جو بات چیت اسلام آباد میں ہوئی ہے گو کے نتیجہ خیز نہیں ہے، لیکن راستہ یہی ہے۔ ہماری خواہش کبھی بھی یہ نہیں ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان بارڈر کے معاملے پر الجھیں اور دونوں طرف سے خون بہے جیسا کہ ہوا ہفتہ پہلے۔ وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں۔ لیکن یہ اندیا دینا کہ اس سے جو ہے وہ دہشت گردی پیدا ہوئی اور دہشت گردی حل ہو جائے گی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایک دھول جھونکنے کی بات ہے جو دنیا کی آنکھوں میں، جب پاکستان کے اوپر دنیا کا پریشر آتا ہے کہ بھائی ایک موٹا تازہ دہشت گرد آپ کے علاقے میں مار دیا گیا، تو اب ان کی کوئی لیوریج نہیں بچی امریکہ کے اوپر۔ وہ پہلے تو نیٹو کے ٹرک جلا دیتے تھے، یعنی بات ہوئی نہیں ہو نیٹو کے ٹرک جلا دیا، وہ ٹرک آتے جاتے نہیں ہیں، کوئی اور اس قسم کا امریکہ کے اوپر ان کے پاس لیوریج نہیں ہے۔ امریکہ نے ویسے ان کو F-16 کے معاملے میں ہری جھنڈی دکھا دی ہے، لال جھنڈی دکھا دی ہے، تو اب ایک لیوریج افغانستان کے اوپر یہ ریفیوجیز کا استعمال کرتے ہیں، ایک لیوریج جو ہے وہ ڈیورن لائن کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ کھلی دہشت گردی۔ آج جو کابل میں دھماکہ ہوا، 13 نیپالی اس میں مارے گئے اور کچھ افغان، اسی طرح بدخشاں میں ایک دھماکہ ہوا، 22 آدمی افغانستان میں آج مارے جا چکے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کی مرکزی عمارت کا ترجمان ہے، اس نے کابل دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، اور پاکستان کی سیٹلڈ ایریا میں کوئٹے میں ملا ہیبت اللہ کا انتخاب ہوا ہے جو طالبان کی مرکزی عمارت کا امیر ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ڈیورن لائن سے کوئی وابستگی نہیں ہے کہ پاکستان،
تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
ایک عرض اور سن لیجیے
جی
جی، یہ ابھی خیبر پشتونخوا کی حکومت نے 300 ملین روپے جو ہیں وہ حقانی مدرسے کو دیے ہیں جو اکوڑا خٹک میں ہے، اور جنرل صاحب کے جی ایچ کیو سے وہ ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے جی، ہمارے پشاور سے وہ 45-50 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ 1970 میں جلال الدین حقانی طالب علم تھا، 1970 میں، اس وقت کون سا سوویت یونین تھا، اس وقت کون سا سی آئی اے وہاں آیا تھا، 1970 کی مولانا عبدالحق کی الیکشن میں وہ اکوڑا میں کیمپین کرتا رہا، 1975 میں وہ وزیرستان میں اپنا ہیڈ کوارٹر بناتا ہے، 1983 میں اس نے وزیرستان میں درپخیل میں اپنا منبت العلوم مدرسہ بنایا جو پاکستان کی 11 کور کے جو لوکل ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے اسے نہر کے پار کو 1.25 میل کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ وہ 20 سال 25 سال 30 سال بیٹھا رہا جب تک یہ ضرب عزت شروع نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان کو اٹھا کے انہوں نے اور اگزئی اکرم پتہ نہیں کہاں کہاں وہاں پہ بکھیر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیورن، کون سے ڈیورن لائن جی، یہ ڈیورن لائن کا احترام یہ کرتے ہیں، کمال کی باتیں کرتے ہیں۔
اوکے، تو پھر کس طرح یہ مسئلے کا حل کیا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے؟
دشمنوں کو اپنی سرزمین پر پناہ نہ دیں، افغانستان کو ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے دیں، چاہے وہ ان کے ساتھ بحیرہ عرب میں معاملہ کریں، چاہے دبئی میں کریں، چاہے اپنی سرزمین کریں۔ پاکستان کے اس بارے میں کس بات کا اختیار ہے کہ وہ افغانستان کے یعنی بدنام دہشت گردوں کو بلا کے پاکستان میں رکھتا ہے اور پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں میں رکھتا ہے؟ میں قبائل کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا جی، یعنی کوئٹہ ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، جہاں پہ یہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں، اس کے بعد ڈیورن لائن آ جاتی ہے، کمال کی باتیں ہیں۔
اوکے، بریگیڈیئر صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر تقی صاحب کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، بارڈر مینجمنٹ سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے پہلے تو میں تقی صاحب کی یہ جو پرجوش بات چیت تھی اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جی یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جو ان کے اپنے پرسیپشن میں، اور یہ کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے یا جو کر رہا ہے، یہ بارہ جی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو سنا جا سکتا ہے۔
لیکن کیا یہ صرف پرسیپشن ہے، یہ ڈاکٹر تقی صاحب کی صرف مس پرسیپشن اس کو ہم کہہ لیں؟ ملا نصیر اللہ حقانی جو ہے آپ کی نظر میں وہ اسلام آباد میں روٹیاں خریدتے ہوئے نہیں مارا گیا؟
بالکل صحیح ہے، دیکھیں یہ بات صرف آپ ون سائڈڈ ویو آپ لے رہی ہیں، اب میں بھی یہ آپ سے یہ سوال
میں آپ کو بھی موقع دے رہی ہوں۔
اللہ کنر اور نورستان میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جو لوگ جنہوں نے آ کے آرمی پبلک اسکول پشاور میں تقریباً 140 بچے مار دیے، وہ کہاں سے آئے تھے اور کون سے راستے سے آئے تھے؟ جن لوگوں نے آ کر بڑا بیر پہ حملہ کیا وہ کہاں سے آئے تھے، کون لوگ تھے وہ، کنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا؟ جن لوگوں نے آ کے وہ مردان میں یونیورسٹی کے اوپر حملہ کیا تھا وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، اور کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ जो रॉ के एजेंट और एनडीएस के एजेंट बलूचिस्तान में और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ काम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये वन साइडेड व्यू जो तकी साहब का है ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ।
ठीक,
ये बिल्कुल वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान अपने सब ये काम बंद कर दे तो सबसे पहले वो उनको चाहिए कि अफगानिस्तान भी अपने गिरेबान में झांके और वो देखे वो क्या कर रहा है। खाली एक तरफ की बात करना कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, बिल्कुल गलत है एक बात। दूसरी बात ये है कि इनको इस सबको बिल्कुल तारीख के पस मंजर में देखना चाहिए। यह हक्कानीज कब पैदा हुए थे? यह हक्कानीज उस वक्त पैदा हुए थे जब के अमरीका जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहा था। ये सब मुजाहिदीन जो हैं उस वक्त की बाकियात हैं। 89 में जब अमेरिका अपने हाथ झाड़कर और यहाँ से जंग जीत कर सोवियत यूनियन के खिलाफ यहाँ से चला गया और पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगा दिए तो उन्होंने पाकिस्तान से वो कैपेसिटी ही छीन ली जिसे पाकिस्तान इस पूरे इशू के साथ या इस सिनेरियो के साथ या इस एनवायरनमेंट के साथ डील कर सकता था। उसके बाद से इस बॉर्डर के ऊपर ड्यूरन लाइन के दोनों साइड्स पे यही मुजाहिदीन जो थे जो पहले जमाने में मुजाहिदीन थे यही फिरते रहे और यही यहाँ पर रहते रहे। इन्हीं कबाइल में इनकी शादियाँ हो गई हैं। जिस शख्स की एक कबीले में शादी हुई है वो एक दिन किसी का दामाद बन जाता है, किसी का खालू बन जाता है, किसी का चचा वो कुछ और फुफड़ बन जाता है, क्या बन जाता है। तो इस तरह से इनकी रिलेशनशिप्स आपस में बन गई हैं। तो अब इनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है उस तरह से कि अगर आप जो इनकी रिलेशनशिप बन गई हैं, रिश्तेदारियाँ बन गई हैं, उनको आप कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं जब तक कि आप उनके खिलाफ जंग ना करें। फिर एक और बात ये कही आ रही है जी कि मुल्ला अख्तर मंसूर को इन्होंने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। ये तो अमेरिका की बात है, वो तो उसको उस वक्त ही मार सकते थे जब वो अफगानिस्तान में था, वो तो उस वक्त ही मार सकते थे जब वो ईरान में था या दुबई में था, तो वहाँ पर क्यों नहीं मारा। तो ये जो तमाम बातें हैं ये बगैर मकसद के नहीं हैं, ये एक अपना खास एजेंडा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये लेकर चलते हैं और यही बातचीत करते हैं। मैं तो अगर इसको फौजी इस्तेलाह में देखा जाए तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के दरमियान में एक रिवर्स्ड फ्रंट्स के ऊपर एक किस्म की समझ जंग चल रही है कि अफगानी पाकिस्तान की जमीन सरजमीन को इस्तेमाल करके वापस अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो बात अगर ये है कि इसको सुलझाना है तो इसमें जोश और जज्बे की बात नहीं है ज़्यादा, इसमें अकल और फहम और दानिश के साथ हमें बैठकर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इन मामला को रिजॉल्व करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेज़ के ऊपर ही निगोशिएशन के थ्रू ही ये मामला हल हो सकते हैं।
ठीक,
और एक आखिरी बात
जी,
ये जो गेट है तोरखम पे, ये गेट तो पहले से भी मौजूद था, ये गेट तो तोड़ा गया था तोरखम जलालाबाद सड़क बनाने के लिए, वो हाईवे बनाने के लिए जो कि पाकिस्तान में के FWO बनाकर दे रहा उनको, और जब वो रोड बन गई तो वो गेट दोबारा बना रहे थे। तो इसमें झगड़ा किस बात का है? अफगानिस्तान को और उनके जो हमायती हैं उनको ये चाहिए कि अफगानिस्तान को अकल दें, थोड़ी सी वो उनको समझ बूझ दें कि अपने जो इतने ज़्यादा उनके पास इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और अपने इश्यूज में और इजाफा ना करें
जी।
पाकिस्तान एक पीसफुल अफगानिस्तान के हक में है और पाकिस्तान यकीनन यही चाहेगा कि अफगानिस्तान के साथ बेइंतहा पुरअमन और बरादराना तअल्लुकात इनके कायम रहें और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है।
ठीक, ओके ब्रिगेडियर साहब, आपसे मुझे आखिरी क्वेश्चन भी करना है, मेरे साथ रहिए प्लीज़। डॉक्टर तकी साहब, मुझे वाइंड अप भी करना है और आखिरी क्वेश्चन जो मेरा है उस पर आपके भी मैं कमेंट्स लेना चाहूँगी। आप अगर कुछ कहना चाहें इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूँ आपसे।
दीजिए, मुझे दो मिनट दीजिए। ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया मुल्ला फजलुल्लाह का जिक्र उन्होंने किया, थोड़ी सी याद दहानी करा दूँ ब्रिगेडियर साहब को। मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो मदरसा पंजपीर का फारिग तहसील है, जो सलफी मदरसा है सुआबी में जी, और मौलाना तैयब का मदरसा है, और उनके भाई जो हैं मेजर आमिर वो आपकी फ़ौज के बड़े सरगर्म आदमी रहे हैं, वो वहाँ से फारग तहसील हुआ 2008 में आपके ऑपरेशन से, वो भागा वहाँ से स्वात से, और उससे पहले आपका कमिश्नर सैयद जावेद कबल में मामढेरी में मुल्ला फजलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ता रहा, उसके अलावा आपके ऑफिशियल उसके पास आते जाते रहे, आपसे वो एक ऑपरेशन से भागा, दूसरे ऑपरेशन से भागा, तीसरे से भागा। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? अफगान हुकूमत ने तीन ऑपरेशन किए हैं कोनार में और नूरिस्तान के इलाकों में, जहाँ जहाँ उनकी रीच पहुँच सकती थी उन्होंने की, और मार्क माई वर्ड्स, जब भी उनको मौका मिलेगा उसको मार के आपको हवाले कर देंगे। डॉक्टर अशरफ गनी की तकरीर हफ्ता पहले की रिकॉर्ड के ऊपर है, डॉक्टर अशरफ गनी अच्छे और बुरे तालिबान में तख्सीस नहीं करते, आप तो ये मानने के लिए तो तैयार हैं ना कि ये आप लोगों ने इनको वहाँ पर पनाह दी हुई है। अगर आप नहीं भी मानते तो आपके वजीर खारजा के वजीर आजम के जो सबसे बड़े मुशीर हैं सरताज अजीज साहब, वो तो यहाँ पर बयान देकर गए हैं अमरीका में। ये मेरी परसेप्शन नहीं है, ये उनका बयान है, तो लोगों के मुँह में अल्फाज न डालिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है जी। और फिर आप एक शोशा उठा देते तोरखम गेट आप 10 दफा बना लें, हकानिया मदरसा जो है वो तोरखम गेट से रुकेगा, और ये वो हकानिया मदरसा नहीं है जिसने तहरीके तालिबान की पुश्तीबानी की और बार बार वो उनकी हिमायत के ऊपर कमर बस्ता रहे, और वो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान की फौज से लड़ती रही, पाकिस्तानी फौजियों के सरों से फुटबॉल जिन लोगों ने खेला उनको 300 मिलियन रुपए दिए जाए, यानी सोचने की बात है कि हर जैद तालिब लीडर जो है वो उस मदरसे से निकला है। आप कहते हैं सोवियत यूनियन जो है वो 1980 के आसपास 79-80 में अफगानिस्तान में उतरा है। अमेरिका ने ब्रिजिंस्की के जमाने में 80-81 में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में हुई है। 1970 में कौन सा अमेरिका था अफगानिस्तान में? कमाल की बातें करते हैं जी। तारीख अगर आपने नहीं देखी हुई तो कम से कम ये ना समझे कि दूसरों को भी नहीं पता।
ओके डॉक्टर जैक साहब, हमारे साथ रहिए। आखिरी क्वेश्चन दोनों मेहमानों से मैं करना चाहूँगी, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब आपसे, कि जिस तरह अभी अफगानिस्तान के फरा प्रोविंस के गवर्नर आसिफ नंग साहब ने हमें बताया कि रवा माह के 23rd और 24th तारीखों को सरताज अजीज साहब और अफगानिस्तान के वजीर खारिजा जो हैं उनके माबेन मुलाकात होनी है और इन्हीं बॉर्डर इश्यूज़ पे दोबारा बात होगी, तो उससे क्या इम्कानात रखे जा सकते हैं? क्या मामला जो है पूरी तरह हल हो जाएगा?
मेरे ख्याल में शना साहब के इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है
जी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी मामलात हैं इनको तो हर हाल में रिजॉल्व होना है, क्योंकि ये दोनों ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हक में और उनके इंटरेस्ट में है कि इनके मामला दुरुस्त रहें। अफगानिस्तान को खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक लैंडलॉक मुल्क है, उसको जो रास्ते बाहर तजारत के लिए हैं वो पाकिस्तान के थ्रू ही जा रहे हैं। अगर वो अभी चाबहार और पोर्ट का इस्तेमाल करना और उसका लिंकेज जो अफगानिस्तान के साथ बनना, वो शायद बहुत अरसा लग जाएगा उसको और काफ़ी टाइम लगेगा उसको, और फिर वो वहाँ से कितना कुछ कितनी तजारत कर सकेंगे। इनकी सारी पश्तून आबादी जो है वो तो ईस्ट और साउथ की तरफ है और सब के सब पाकिस्तान के थ्रू ही अपना कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन से बेहतरीन तल्लुकात हों। इनके कोई सही फिगर तो मालूम नहीं, शायद 3-3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजी तो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनको उसका भी बिल्कुल ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान ने उनको पिछले 30-40 साल से अपने पास रखा हुआ है, अपने खर्चे पर रखा हुआ है।
ठीक।
और ये बिल्कुल जैसे वो अंसार और महाजरीन की बात होती थी किसी ज़माने में, अब ना वो महाजरीन अब उसरा रहे हैं और अब अंसार का भी जो है मेरे हाल में अभी जो सबर का पैमाने वो लबरेज होता जा रहा है। तो हमें इस सूरत में नहीं आना चाहिए कि अफगानियों में और पाकिस्तानियों में इस किस्म की बदगुमानियाँ पैदा हों और जो आगे बढ़ जाएँ। जहाँ तक ताशकंद की बात है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर जब वहाँ मिलते हैं तो यकीनन कोई ना कोई इसका हल जरूर निकालेंगे और ये हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू कम टू टर्म्स एंड दे हैव टू बिकम फ्रेंड्स। और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ये दोस्त बने और मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए ये इन मामलों को सुलझाएं। और जहाँ तक बात है टेररिज्म की, जब तक बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं आएंगे मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला किसी भी तरह भी सुलझ सकता है।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब आपका, थैंक यू सो मच सर, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर तकी साहब, सेम क्वेश्चन का अगर आप जवाब दें, कितने आप पुरुमीद हैं ये जो इस वक्त कशीदगी हमें नज़र आ रही है उसमें कमी तो हुई है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये जो मामला है अभी तक है बॉर्डर के हवाले से, ये जो अभी मुलाकात होगी 23rd 24th को, तो आपको लगता है कि इसका एक मुकम्मल हल जो है वो सामने आ जाएगा?
मेरा ख्याल में जी ड्यूरेंट के मसले का मुकम्मल हल तो नहीं निकलेगा। अफगानिस्तान उसको एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर कबूल नहीं करेगा, जो उनका एक तारीखी क्लेम है, सही है या गलत है वो बहरहाल उसके ऊपर वो कायम रहेंगे। वो मसला जो है वो अफगानिस्तान में लोया जरगर को हल करना है और वो इन हालात में हल नहीं हो सकता। ये कि बॉर्डर सिक्योर करने के मैकेनिज्म, ट्रांजिट ट्रेड के मैकेनिज्म, लोगों की आमद रफ्त के मैकेनिज्म, इन पर जरूर बात होगी और हल होना भी चाहिए उसको। और शायद दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में यही है कि उसको कोई डिफेक्टो उस मसले का हल निकालें, डिजेरे शायद वो हल ना हो सके, उसका बिल्कुल एक हतमी हल इस वक्त नहीं निकलेगा। मगर ये कहना कि इससे दहशतगर्दी का मामला हल हो जाएगा, दहशतगर्दी का मामला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपना किबला दुरुस्त न करे। उनकी अगर ये नजर है कि वो अफगानिस्तान पे जोर जरब से अपनी मर्जी मनवा सकते हैं, ड्यूरन या कुछ और चीजें मनवा सकते हैं, तो यही पाकिस्तान सारी दुनिया को ये बावर कराता रहा कि अफगानिस्तान तो बैन अल-अक़वामी एम्पायर का कब्रिस्तान है, तो ये कैसे सोच सकते हैं कि फिर ये जोर जबरदस्ती से अपनी बात उनको मनवा लेंगे। अगर अमरीका और रूस और बरतानिया नहीं मनवा सके तो ये कैसे मनवा लेंगे। लिहाजा बात वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। अफगानिस्तान की अपनी इंतहा मुश्किल है, मैं ब्रिगेड साहब से इस बात इतफाक करता हूँ। अफगान महाजरों का एक बड़ा मसला है जो पाकिस्तान एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को इसके ऊपर बहुत फिलफौर गौर करना चाहिए कि इस मसले का हल निकाला जाए। अफगानिस्तान मजबूत होगा तो अपनी जो उनकी पोजीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका दिफा कर सकेगा, और इस किस्म की लेवरेजेस अगर हमसाया मुल्कों के पास रहेंगी तो वो खुलकर खेलेंगे और इस किस्म की बड़बोलियां करते फिरेंगे।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। और सामिन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब ने, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि एक मुख्तसर सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक से वापस आकर जो NSG में शमूलियत के लिए मेम्बरशिप हासिल करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया ने जो एप्लीकेशंस दी हैं, कहा जा रहा है कि ग्रुप की जानिब से उनको इस हफ्ते रवां हफ्ते रिव्यू किया जाएगा, क्या इम्कानात नज़र आते हैं, मेंबरशिप मिल सकेगी इन दोनों कंट्रीज़ को या नहीं, इस पे हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर नैयर साहब से। लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
ग्लोबल इश्यूज़ पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफज़दा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन तो लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
तो पाकिस्तान का पूरे का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदेद, जो आप सुन और देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन स्टूडियो से बराह रास्त, और डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो NSG में शमूलियत के जो एप्लीकेशंस पाकिस्तान और भारत ने दी है, उसको आज रिव्यू रवां हफ्ते किया जाएगा, आप क्या इम्कान देखते हैं? और इस ग्रुप में शमूलियत की जब हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, और दोनों ममालिक कहाँ तक उस पर पूरे उतरते हैं?
जी, मेरे ख्याल में जो ताज़ा तरीन बात है वो ये कि चाइना ने इस सवाल को एक और सवाल से नफी कर दिया है। वो ये है कि जिन ममालिक ने एक उसूली मौक़िफ़ से कि जिन ममालिक ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, उनकी मेंबरशिप के बारे में क्या रवैया अख्तियार किया जाए। और ये बात जो है वो इस वजह से है कि उनकी बुनियादी शरायत ये है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत होनी चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि इस हवाले की वजह से हिंदुस्तान के अखबारात का जो मैंने आज देखा है, बहुत मुतालिया किया है, मुझे लगा ये कि हिंदुस्तान में भी अब ये बात समझी जा रही है कि इस सवाल की वजह से इस इजलास में जो कोरिया में हो रहा है, सोल में हो रहा है, उसमें एनएससी की मेंबरशिप के बारे में हतमी तौर पे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। एक बात और भी चीन ने कही है, वो ये है कि वो इसको एक 100 गज की दौड़ ना समझे, बल्कि इसको 26 मील की दौड़ समझे, जो मैराथन होती है ना वैसी समझे, कि आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते दौड़ते आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान को बहुत जल्दी करने की जरूरत इस वजह से भी नहीं है कि हिंदुस्तान अपने तमाम मराज जो मिल सकती हैं मेंबरशिप से, वो तो वैसे ही यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील और फिर एनएसजी, उसके नतीजे में होने वाली एनएसजी एक्सेप्शंस जो इसको मिली थी 2010 में, उसका फायदा उठा रहा है, और उसका फायदा वही नहीं उठा रहा और दूसरे ममालिक भी उठा रहे हैं जिन्होंने अभी हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रेड के रास्ते खोल दिए हैं। पाकिस्तान को जो मुश्किल है वो ये है कि पाकिस्तान ये इतनी आजादी के साथ ये ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए एक दरवाजा खुला हुआ है और वो दरवाजा चीन का है कि चीन ने कहा कि भाई हमने तुमसे वादे किए थे अपने एनएससी का मेंबर बनने से पहले, लिहाजा हमें हक है तो वादों को पूरा करें, लिहाजा हम आपको फिर भी बेचते रहेंगे। तो सिर्फ चाइना है जहां से पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही है। न्यूक्लियर मटीरियल्स एक खास रुकावट है क्योंकि पाकिस्तान यूरेनियम कहीं से नहीं खरीद सकता, हिंदुस्तान जहां से चाहे खरीद सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है चाहे सिविलियन प्रोग्राम में, और अपना जो यूरेनियम है वो वेपन्स प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त उसका फर्क है वो ये है, ऐसे में पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है, हिंदुस्तान को एडवांटेज है। हिंदुस्तान अभी इंतजार कर सकता है चंद महीने, एक साल, दो साल, कोई जल्दी नहीं है। आखिर में मुझे ये भी कहना है कि हिंदुस्तान ने अभी रिसेंटली कुछ इस किस्म के बयान दिए हैं कि उसे ये अंदाजा हो गया कि उसके ऊपर वीटो लग सकता है कंसेंसस ना होने का, जिसकी वजह से वो अपने मौकफ को थोड़ा सा कमजोर करने पे आमादा हो गया है। और उसने ये कहा कि उसे इससे भी कोई फायदा नहीं पहुंचा कि पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप मिल जाए।
Right.
तो अगर फर्ज किया कि वो इस बात पे तैयार हो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मेंबरशिप अगर मिलने का इम्कान हो तो फिर शायद जो मुखालिफत है वो खत्म हो जाए और कोई एक मौका बन जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि एनपीटी की के ऊपर दस्तखत न करने का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदी थी वो खत्म होने से दोनों के दोनों न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो मेरा ख्याल है कि एटमी हथियारों के खत्म करने के मामले के रास्ते में एक बड़ी बुरी बात होगी।
ओके, पाकिस्तान का उसके कितने आप इम्कान देखते हैं
किस चीज के, पाकिस्तान में
जी उसकी शमूलियत के कितने इम्कान देखते हैं? क्योंकि
पाकिस्तान की शमूलियत के इम्कान जो हैं वो इसी वजह से बड़े हैं, चीन ने उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग मौकफ लिया है कि हिंदुस्तान की मेंबरशिप उसी वक्त होगी जबकि आप सवाल तय करेंगे कि जिन लोगों ने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हैं वो मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर हिंदुस्तान बन गया तो पाकिस्तान भी के भी बनने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, अगर हिंदुस्तान नहीं बना तो पाकिस्तान भी नहीं बन पाएगा। मेरे ख्याल है कि अब इसका इम्कान नहीं है कि पुराने सवाल उठाए जाएंगे कि पाकिस्तान ने सन 2002-2004 में डॉक्टर ए क्यू खान ने प्रोलिफरेशन की थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदार है लिहाजा उसको मेंबर नहीं बनना चाहिए। ये वो बात है जो 2005 में और 2008 में पाकिस्तान ने यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के वक्त उठाया था, तो अब उठाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को यकीन दिला दिया है कि उसके पास से प्रोलिफरेशन अब नहीं हो रही, लिहाजा उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ओके,
चीज है जिसकी वजह से इम्कान जो है वो बराबर के हैं।
ठीक डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि भारत को के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है इस ग्रुप एनएसजी की का मेंबर होना या ना होना, वो पहले ही जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे चीज़ें जो हैं इस मेंबरशिप के बग़ैर भी वो ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आज का पाकिस्तान है जो मेंबर नहीं है एनएसजी का, और अगर वो एनएसजी का मेंबर बनता है तो फ़र्क क्या पड़ेगा?
सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये पड़ेगा कि पाकिस्तान फिर यूरेनियम बाहर से खरीद सकेगा। यूरेनियम बाहर से खरीदने का मतलब ये हुआ कि वो फिर अपने पास यूरेनियम अपने रिएक्टर में सिविलियन इस्तेमाल के वास्ते, सिविलियन इस्तेमाल के वास्ते अपना यूरेनियम जो है वो जो आजकल कराची के रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते, रिएक्टर के लिए इस्तेमाल करता है या मुस्तकबल में रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो बाहर से खरीद सकेगा। और जो अपना यूरेनियम है जो खुद हासिल करता है वो हिंदुस्तान की तरह वो उसको अपने हथियारों के इस्तेमाल के वास्ते एक तरफ कर देगा ताकि दुनिया उसको देख सके कि कितना यूरेनियम कहाँ इस्तेमाल होगा। ये बात पाकिस्तान के फायदे में होगी। दूसरे उसके अलावा मेरा ख्याल है अहम बात जो है वो ये है कि इसकी एक सिम्बॉलिक वैल्यू है, और सिम्बॉलिक वैल्यू जो है वो ये है कि आप न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम में लाए जाते हैं कि नहीं लाए जाते, आप क्या अभी तक एक मार्जिनलाइज्ड कंट्री है कि जिनको लोगों ने कहा हुआ है कि आप नाजायज तौर पे आपने न्यूक्लियर स्टेटस हासिल कर लिया है लिहाजा हम आपको तस्लीम नहीं करते, या ये कहते चलिए हम आपको तस्लीम करते हैं और आप भी जायज न्यूक्लियर स्टेट है। ये बहुत अहम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सवाल के तौर पर
जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने का, बेहद शुक्रिया हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और सामीन ब्रेक लिए बगैर इस वक्त हम नेक्स्ट सेगमेंट पे लिए जाना चाहेंगे। UNHCR के तर्जुमान बाबर बलोच साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। और बाबर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और जिस तरह के आपके इल्म में है कि आज दुनिया भर में पनागजीनों का महाजरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपका जो इदारा है UNHCR उन्होंने एक रिपोर्ट भी इस हवाले से जारी की है, ये बताइएगा उस रिपोर्ट के तनाजुर में हमें बताइएगा कि आजकल महाजरीन जो है उनकी सूरत हाल क्या है।
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। UNHCR ने आज ही ये रिपोर्ट जारी की है और हमने शाया किया है इसको, तो हम एक नज़र दौड़ा रहे हैं पिछले साल के हालात पे कि दुनिया भर में कितने लोग थे जो मजबूर हुए हालात की वजह से या जिनको मजबूर किया गया कि वो अपना घर अपना वतन या अपना मुल्क छोड़ें। तो जो पिछले साल के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 65.3 मिलियन लोग मजबूर हुए अपने घरों से निकलने, या वो लोग थे जो ऑलरेडी अपने घरों से निकले हुए थे। इनमें 21 मिलियन के करीब वो लोग थे जो मुहाजरीन बनने पे मजबूर हुए यानी अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हुए, और इसके साथ साथ 40 मिलियन के करीब वो लोग थे जो अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए लेकिन वो अपनी मुल्की सरहद से पार नहीं गए बल्कि अपने मुल्क में ही वो बेघर और दरबदर हुए, और उसके साथ साथ 32 लाख वो थे जिन्होंने पनाह की दरख्वास्तें दी हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में बशमूल यूरोप। तो ये एक बहुत ही तश्वीशनाक सूरत हाल है जिससे लोग गुजर रहे हैं आलमी तौर पे। इस 65.3 मिलियन को अगर आप किसी मुल्की आबादी के तनाजुर में देखें तो ये बरतानिया, फ्रांस और इटली के ममालिक की आबादी के बराबर आते हैं, और अगर इनका कोई अपना मुल्क होता तो ये दुनिया में 21वां बड़ा मुल्क होता आबादी के लिहाज से।
ओके, तो ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा और इस रिपोर्ट में हमने पढ़ा भी है कि दिन ब दिन पनागुजीनों की तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज़्यादा तादाद जो है इन पनागुजीनों की ये शाम, अफगानिस्तान और सोमालिया से है। ये बताइएगा कि आलमी बरादरी का जो रद्दअमल है वो क्या सामने आ रहा है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों की जो सूरत हाल है, इनकी हालत इज़हार जो है वो इतनी अच्छी नहीं है।
बिल्कुल, अगर आलमी तनाजुर में हम देखें मुहाजरीन की, ये वो लोग जो घरों से बेघर होते हैं, एक तो ये है कि जब कोई इस तरह के मसाइल लोगों को दरपेश आते हैं तो यकजहती का फुकदान नजर आता है। यकजहती का फुकदान इस लेवल पे कि अमन की तलाश, जहाँ पे इन लोगों की दोबारा आबादकारी की जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, शाम की सूरत हाल आपके सामने है, सोमालिया, इराक, यमन आप देखते जाएं और شورش زدہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جب ایسی صورتحال کا آغاز ہوتا ہے تو پھر جو نارمل حالات ہیں اس میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ لاچار مجبور پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جیسے یورپ میں آج کل لوگ مجبور ہو کے آتے ہیں تو وہاں بھی ان کو کوئی زیادہ مدد یا ان کی داد رسی نہیں ہوتی. یورپ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ بارڈروں کو بند کرنے کا رجحان ہے. یورپی ممالک اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ مہاجرین کہیں اور رہیں, ہمارے پاس نہ آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل بھی دستیاب نہیں ہیں میرے جیسا ادارہ جو UNHCR ہے اس کو, تاکہ ان بےگھر لوگوں کی مدد کی جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے سال ہر ایک منٹ میں 24 لوگ دنیا میں بےگھر ہونے پہ مجبور ہوئے یا بےگھر کیے گئے.
زبردستی. اوکے, بہت شکریہ بابر بلوچ صاحب, آج کافی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے UNHCR ہی کی ترجمان پاکستان میں اس وقت پاکستان کے لیے دنیا اسلم خان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم دنیا اسلم خان صاحبہ. دنیا اسلم خان صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دنیا اسلم خان صاحبہ, جی بتایا جا رہا تھا کہ دنیا اسلم خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہے لائن پہ, ہم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت افغان پناہ گزین کافی بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے, ان کی حالت جو ہے وہ کیا ہے, اور اس حوالے سے یہ ان کی وطن واپسی کے حوالے سے جو پاکستان کے کنسرنز ہیں, ان کے جو خدشات تحفظات ہیں, اس کو عالمی برادری جو ہے کہاں تک توجہ دے رہی ہے, یا اس کو پاکستان کی کہاں تک مدد کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے دنیا اسلم خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی دنیا اسلم خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دنیا اسلم خان صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل,
آپ کی آواز ابھی آئی ہے, تھینک یو سو مچ, شکریہ. دنیا اسلم خان صاحب, جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آج پناہ گزینوں کا عالمی دن مہاجرین کا منایا جا رہا ہے پاکستان میں, ہمیں بتائیے گا افغان پناہ گزین چونکہ بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں, ان کی کیا صورتحال کیا ہے؟
جی بالکل, جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے آج جو گلوبل فرنڈ رپورٹ UNHCR نے پبلش کی ہے اس کے مطابق افغانستان ابھی بھی دنیا کے ٹاپ 3 ریفیوجی پروڈیوسنگ ملکوں میں ہے. ترکی کے بعد سیریا کے بعد افغانستان کا نمبر آتا ہے اور پھر صومالیہ کا. تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں, اور تقریباً اتنے ہی حکومت پاکستان کی اعداد و شمار کے مطابق غیر رجسٹر شدہ افغان مائیگرنٹس آباد ہیں, اور ان میں سے زیادہ تعداد 51% جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, جو کہ اس پاپولیشن کی ولنریبلٹی کو اور زیادہ بڑھاتی ہے, کیونکہ ایک بہت ینگ پاپولیشن ہے جس کی ضرورتیں اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے.
ٹھیک, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی قیام کی جو میعاد ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ وطن واپس جا سکیں گے؟ کیونکہ پاکستان نے آج رپورٹ یہ ہے کہ پاکستانی عہدیداروں نے عالمی برادری کی ہیلپ بھی مانگی ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ وطن واپس جا سکیں.
دیکھیں, کسی بھی پوسٹ کانفلکٹ سیناریو میں UNHCR کا اور ریفیوجیز کا, دونوں کا ہی یہی وہ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین ہو یا کہیں پہ بھی مہاجرین ہو, وہ عزت سے اور رضاکارانہ طریقے سے واپس اپنے ملک چلے جائیں. لیکن کیونکہ افغانستان کے حالات ہم نے دیکھے, پچھلے سال افغانستان میں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ بڑی ہے, ریکارڈ ہائی ہے, تقریباً اس وقت 17 لاکھ کے قریب افغان افغانستان کے اندر ڈسپلیس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کے تقریباً 27 لاکھ لوگ ملک سے باہر مہاجرت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, اور جو لوگ یورپ جو مہاجرین اور مائگرنٹس گئے ہیں تقریباً 1 ملین، اس میں سے بھی 27% افغانوں کا ہے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ افغانستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ افغان مہاجرین واپس فوری طور پہ افغانستان جا سکے، کیونکہ یہ صرف مسئلہ لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنے کا نہیں ہے، یہ ہماری طرح آپ کی طرح انسان ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی اکثریت 70% آبادی کا 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں، اور 51% آبادی جو ہے 18 سال سے کم عمر کے بچوں پر مشتمل ہے، تو ان لوگوں کی تعلیم کی، صحت کی ضرورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ افغانستان میں ابزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہی امنیت کی صورت حال ایسی ہے کہ ان لوگوں کو واپس جبر اور تشدد کر کے بھیجا جا سکے۔
بہت شکریہ دنیا اسلم خان صاحبہ، آپ کا ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ اور سامعین، یہ بھی ساتھ اطلاعات ہیں کہ یو این ایچ سی آر کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ شاید 22 جون کو پاکستان کا دورہ کرے، اور اسی ایشوز کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈسکس کیا جائے گا پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس وقت عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، امریکی ویل نون تجزیہ نگار ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم عرفان ملک صاحب۔ عرفان ملک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی،
السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عرفان ملک صاحب، آج امریکی سینٹ میں جو یہاں پہ گن کنٹرول قوانین ہیں اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اورلینڈو میں جو فائرنگ کا واقعہ تھا اس کے 1 ہفتے بعد ہو رہی ہے، تو آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ ترامیم جو ہے اس پہ، اس کے حق میں کوئی نتیجہ آ سکتا ہے؟
نتیجہ فوراً تو بہت مشکل لگتا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ صدر اوباما کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ گن کنٹرول پہ کوئی قانون بنایا جائے، اور آج سے کوئی 2 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو جو کنیٹیکٹ میں ایک اسکول میں واقعہ ہوا تھا، جہاں پہ بچے، کوئی 25 کی تعداد کے بچے مارے گئے تھے، اس وقت کافی صدر اوباما نے کوشش کی تھی، اور صرف یہی کوشش کر رہے تھے کہ اس موضوع پہ ڈسکس کیا جائے، قانون کیا بنے وہ بات کی بات ہے، پر اس موضوع پہ ڈسکس کیا جائے۔ پر جو یہاں پہ امریکہ میں جو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے اور جو ریپبلکن پارٹی جو سینٹ کو کنٹرول کرتی ہے، انہوں نے کوئی قانون سینٹ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اب جو چینج آئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی آج کے دن سینٹ میں ایک ووٹ ہوگا جس پہ کوئی 4 بل جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن ہیں، اور 2 ڈیموکریٹس نے پیش کیے ہیں، 2 ریپبلکنز نے پیش کیے ہیں۔ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ 4 بل جو ہیں وہ پاس نہیں ہوں گے اور صرف ایک ڈسکشن ہو کے رہ جائے گی۔ تو ایک یہ سمبولک چیز ہے، اس میں سے کوئی قانون نکلنا آئی تھنک ابھی نہیں کوئی امید، صرف یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے۔ اب ان 4 قوانین میں سے کوئی ایک پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹ ڈالنے سے پہلے فیصلہ کریں اور پھر اس کو ووٹ پہ لائیں، تو اس کی شاید کوئی امکان ہو سکتا ہے اگلے سیشن میں یا اگلے مہینے 2 مہینے میں، پر ابھی جو ہے آج کے روز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی قانون بنے گا، صرف ایک ڈسکشن ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ووٹ بھی نہ پڑے، اور اگر ووٹ پڑے بھی تو 4 کے 4 جو بلز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، ان کو میجورٹی نہیں ملے گی۔
اوکے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے عرفان ملک صاحب کے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کے بیشتر لوگ جو ہیں، میں کہوں گی 95% لوگ، وہ گنس کنٹرول کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کے ترامیم میں کے حق میں ہیں، لیکن ریپبلکن پارٹی کے لوگ جو ہیں بیشتر وہ اس کے خلاف ہیں۔ مین ڈفرینسز کیا ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان؟
مین ڈفرینس یہ ہے جی کہ کتنا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کنٹرول زیادہ ہونا چاہیے، جو ریپبلکنز ہیں ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ کنٹرول کم ہونا چاہیے۔ جو ایک بڑا مین ڈفرینس ایک سینیٹر ہیں ٹیکسس سے، وہ ریپبلکن، انہوں نے جو بل پیش کیا ہے، اور ایک سینیٹر کیلیفورنیا سے ڈائن فائنسٹائن جو ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے بل پیش کیا، اس میں ڈفرنس بہت کم ہے، ڈفرنس صرف ہے ٹائم کا کہ جو ٹیکسس والے سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 72 آورز کی مہلت ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کسی کو گن خریدنے سے پہلے روک سکیں یا نہ نہ روک سکیں. تو جو فائنسٹائن ہے وہ چاہتی ہیں ذرا زیادہ ٹائم ہو گیا, 72 hours کم ہے. تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کنٹرول کسی حد تک چاہتی ہیں, ڈفرنس زیادہ یہ ہے کہ کتنا کنٹرول ہونا چاہیے. آبویسلی ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ بہت کم کنٹرول ہو, ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ زیادہ کنٹرول ہو.
جی بے حد شکریہ عرفان ملک صاحب آپ کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. واشنگٹن اسٹوڈیو سے شہناز نفیس کو نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی